23 नंबर के रजिस्टर में 30-30 पर 10-8-89 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्याह्न। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में ही आएंगे। परंतु ये किसको पता नहीं है, सृष्टि की आय कितनी होती है ये भी नहीं जानते। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, आगे तुम जानते थे नहीं? क्या सृष्टि की आयु 5-4 वर्ष है? नहीं जानते थे? ये तो लाखों वर्ष कह देते। अभी बाप ने समझाया 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग दिखाते हैं। जरा भी फर्क नहीं होता। बेबी एक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आते ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है, यादगार कहाँ की है जगन्नाथपुरी में? जगन्नाथपुरी और श्रीनाथपुरी, श्रीनाथपुरी दिखाते हैं भारत के पश्चिम में और जगन्नाथपुरी दिखाते हैं पूरब में। तो जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा चढ़ाते हैं, घी की कढ़ाइयां नहीं करते हैं, 36 प्रकार के भोग नहीं लगते हैं श्रीनाथपुरी के मुआफिक। लाइट गुजर के बैठा करो ताकि पता ही नहीं लगे सो रहा है कि जिंदा है। चावल का अंडा क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी में वो है सारे जगत का नाथ। सारा जगत बीज रूप आत्माओं में समाया हुआ है। तो आत्मा जब बीज रूप धारण करती है, बिंदु रूप धारण करती है, तो देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ होता है। उसको चावल की संज्ञा देते हैं। टीका भी जब लगाते हैं मस्तक में तो चावल रखते हैं यादगार में कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, शरीर से अलग। तो वो है जगन्नाथपुरी में तराए हुए चावल के हंडे की यादगार। वहां की स्मृति रूपी भोजन क्या है? आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति रूपी चावल। तो जब चावल का अंडा चढ़ाते हैं तो उससे 4 हिस्से हो जाते हैं। क्यों? हाँ, जैसे ही वो चावल का अंडा चढ़ाते हैं तो जब पकता है तो परिपक्व स्टेज में वो 4 हिस्से हो जाते हैं स्वतः ही। माना सबकी यादगार 76 में जैसे ही एडवांस पार्टी शुरू होती है तो बीज रूप आत्माओं की प्रत्यक्षता का पीरियड शुरू होता है, जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो वो चार हिस्सों में बट जाते, देवता, इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। दुनिया वाले तो कहते रहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बनते हैं। लेकिन फर्क तो होगा ना। ब्रह्मा के चार पुत्र बताए गए हैं पहले पहले मानस सृष्टि में, उनके नाम दिए हैं शास्त्रों में, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो सनत कुमार को देवी देवता सनातन धर्म का बीज, और बाकी जो तीन हैं वो तीन बाकी बच्चे धर्मों के बीज हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। उन्हीं को रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बताई दिया। जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो चारों दिशाओं पर जीत पाते हैं। अपनी अपनी दिशाओं में जो धर्मखंड बसे हुए उन पर जीत पाने के निमित्त बने हुए दिखाए गए हैं। तो ये है पूरे चार हिस्से, माने एडवांस पार्टी चार मुख्य वर्गों में बट जाती है। वहां चावल बहुत खाते, घी के पकवान नहीं खाते हैं, लेकिन चावल बहुत खाते हैं। जगतनाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही।
क्या बात हुई?
श्रीनाथ मन श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ, और जगत में तो श्रेष्ठ भी होते हैं और निकृष्ट भी होते हैं। जगत माना 500 करोड़, सबका नाथ, सबका स्वामी, या सबको नाथने वाला। शादी होती है तो नाथ में नथनिया डाली जाती है। तो जैसे पति को कहा जाता है नाथ, स्वामी, ऐसे ही वो सारे जग को नाथने वाला स्वामी है जगतनाथ। तो श्रीनाथ और जगन्नाथ को एक क्यों कह दिया? वो तो श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ हुआ, देव आत्माओं का कौन? ब्रह्मा, कृष्ण वाली सोल, वो सिर्फ देवात्माओं का कंट्रोलर है, सारे जगत का कंट्रोलर नहीं है। फिर एक क्यों कह दिया? क्योंकि वही श्रीनाथ का रोल अदा करने वाली आत्मा ब्रह्मा फिर प्रवेश करती है कोई ऐसे ब्राह्मण बच्चे में जिसके द्वारा सारे जगत का कयामत के समय में कंट्रोल होता है। तो इसलिए बता दिया कि जगन्नाथ और श्रीनाथ है एक ही चीज, क्योंकि एक ही शरीर में दोनों आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। दोनों ही काले दिखाते हैं। जब श्रीनाथ है तो काला क्यों? क्योंकि संगम युग की यादगार है। ब्रह्मा की सोल भी 69 में शरीर छोड़ने के बाद कोई गोरी नहीं बन जाती है, वो भी काली है, माने कोई लक्ष्मी नारायण का पद अभी डिक्लेयर नहीं हो गया, क्योंकि 60 वर्ष जब पूरे हों तब राजधानी स्थापन हो। तो जब तक राजधानी नहीं स्थापन हुई तब तक कृष्ण काला ही रहेगा ना। युगल बने तो गोरा बने, तो दोनों कोई काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडारे होते हैं, سب گھی کی تلی ہوئی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. گھرت مانا یاد کا گھرت, شدھ گھرت. وہ چیزیں تو ملتی ہیں شدھ گھی کی, لیکن باہر میں دکان لگ جاتی ہے. دکان لگا کے بیچتے ہیں بھوگ کو, پیسے دو اور 36 پرکار کے بھوگ لو. کتنا بھوگ لگتا ہوگا. سب یاتری جا کر کے دکانداروں سے لیتے ہیں. دکاندار کیا کریں گے, پیسے لیں گے اور بھوگ دیں گے. بھوگ کا بھنڈارا بہت چلتا ہے. جگن ناتھوں پھر چاول ہی چاول ہوتے ہیں, مطلب وہاں بھوگ بیچا نہیں جاتا. وہ جگن ناتھ سارے جگت کا ناتھ اور وہ سری ناتھ. تو سکھ دھام اور دکھ دھام کا دکھاتے ہیں. سکھ دھام مانا سورگ اور دکھ دھام مانا نرک. سورگ میں تھوڑے ہوتے ہیں اور نرک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو سکھ دھام کا مالک کون ہے؟ سری ناتھ. اور دکھ دھام میں اچھی آتمائیں بھی تو بری آتمائیں بھی, اور ان سب کا کنٹرولر جگن ناتھ. تو سری ناتھ سکھ دھام کا تھا اور وہ دکھ دھام کا. کالے تو اس سمے سب بننے پڑے ہیں. کام چتا پر چڑھ کر جگن ناتھ کو صرف چاول, ان کو غریب دکھاتے ہیں. ان کو جگن ناتھ کو جگن ناتھ کو پاس میں کر دیا ان کو, اور ان کو ساہوکار دکھاتے ہیں. ان کو مانا کن کو ہے؟ سری ناتھ کو. ان کو دور کر دیا. کیوں؟ کیونکہ شیو بابا بھی کیا ہے, غریب نواز ہے نا, تو غریبوں کو نکٹ بلاتا ہے اور ساہوکاروں کو اتنا نزدیک نہیں کھینچتا. اس لیے بولا ان کو غریب اور ان کو ساہوکار دکھاتے ہیں. وہاں گھی کے سب مال بنتے ہیں اور وہاں گھی کی بات ہی نہیں, پریکٹیکل باتیں ہیں. یا ایسے ہی کہنے کے لیے ایسے وہاں گھی کا نام نشان نہیں اور وہاں گھی ہی گھی. سینا دربارے میں جاؤ, ابھی بھی کنواں بنا ہوا ہے. کنستر کے کنستر, ڈبے کے ڈبے لا کے اڑیلتے رہتے ہیں. نیچے مشین لگائے رکھی ہے, اس مشین سے کڑھائی میں اڑیل لیتے ہیں کھینچ کے. تو وہاں گھی کے سب مال بنتے ہیں اور وہاں گھی کا نام نشان نہیں. یہ باپ بیٹھ کر بتلاتے ہیں یہ کہاں کی باتیں ہیں اور کیسے ہیں. جان کا ساگر تو ایک ہی باپ ہے. بھکتی کو تو ساگر کہا جاتا ہے, بس بھکتی کو کہا جاتا ہے اجان. ان سے کچھ ملتا نہیں ہے. वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। कहाँ? श्रीनाथ दरबार में। गुरु लोगों को आमदनी तो बहुत होती है, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। अगर वो धंधा नहीं करें तो खाएं कहाँ से? कौन? श्रीनाथ दरबारे के गुरु लोग ये धंधा न करें, भोग निकाल करके न बेचें, तो उनको रोटी दाल नसीब नहीं होगी। ये उनका धंधा है क्या? भोग लगाए जाओ और खीर पूरी खाए जाओ। गुरु तो ढेर हैं। कोई बाढ़ा बहुत होशियार होगा, कारपेंटर बड़ई, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। तो वो सब है जिस्मानी जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? कारपेंटर का मिसाल दिया कि कारपेंटर होगा ज्यादा होशियार होगा तो उसको भी गुरु मानेंगे। क्योंकि लकड़ी का काम करता है, परंतु वो हुए जिस्मानी गुरु। और ये है रूहानी। रूहानी माने चैतन्य, रूह से कनेक्टेड। तो तुम्हारे साथ है रूहानी बाप और विचित्र बाप है। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। दादा माने बड़ा भाई, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तुमको सुखधाम ले जाने के लिए। प्रवेश इनमें किस लिए करता हूँ? इनमें प्रवेश न करूं तो तुमको सुखधाम कौन ले जावे? हैं? मैं तो सुखधाम जाता नहीं हूं तो तुमको ले कौन जाएगा? इसलिए मैं इनमें प्रवेश करता हूं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले, एक दिन भी कम नहीं। ऑलराउंड पार्ट में से इनका एक दिन भी कम नहीं होता। इसमें प्रवेश करता हूं, जिसमें प्रवेश करता हूं पहले पहले उसको गौमुख भी कह देते हैं। किसमें प्रवेश किया पहले? है ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है? सबसे पहले किसके तन में प्रवेश किया? प्रजापिता में प्रवेश किया। लेकिन बाबा ने तो बोला ब्राह्मण बने बगैर कोई प्रजापिता होगा क्या? पहले तो ब्रह्मा की औलाद माना ब्राह्मण। जैसे जिन की औलाद फॉलोअर जैन, शिव की औलाद या शिव को फॉलो करने वाले शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। अब फिर जब प्रश्न कर दिया कि बिना ब्राह्मण बने प्रजापिता होगा क्या? क्योंकि जो फर्स्ट ब्राह्मण तो फर्स्ट देवता बने, तो फर्स्ट क्षत्रिय, तो फर्स्ट वैश्य, सो शूद्र सो फिर फर्स्ट ब्राह्मण किसकी औलाद हुआ, किसकी भूख वंशावली हुआ, औलाद न सही। किसी के मुख से सुने तब तो मुख वंशावली हो प्रजापिता। तो रुद्रमाला पहले बनती है, रुद्रमाला की पहले दोनों मणके जगत पिता और जगदम्बा है, और दोनों ही मणकों में परमात्मा शिव का आवेश होता है, प्रवेश होता है। एक सिर्फ ज्ञान की जिज्ञासा करता है, ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों का रहस्य पूछता है, और दूसरा प्रजापिता उन साक्षात्कारों के रहस्य को बताने का निमित्त बनता है। तो पिता हो गया ज्ञान बीज बोने का निमित्त, और सुनाने का निमित्त कौन हुआ है? जगत माता जगदम्बा। तो एक ने सुनाया साक्षात्कारों को, और दूसरे ने उन साक्षात्कारों का रहस्य बताया। रहस्य माने ज्ञान, जानकारी। तो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला, बीज बोने वाला हुआ बाप प्रजापिता, और उस ज्ञान के बीज को धारण करने वाली हो गई माता बन्नी। और फिर पहला बच्चा कौन पैदा हुआ? कृष्ण बच्चा ब्रह्म। जिस बच्चे को पहले पहले सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे, लेकिन उन साक्षात्कारों के रहस्य को वो जान नहीं सके, समझ नहीं सके। गुरु ने भी नहीं बताया, बनारस में गए वहां के विद्वान आचार्यों ने भी नहीं क्लियर कर पाया। तो परमात्मा का राज परमात्मा के सिवाय कौन क्लियर करेगा? तो इसलिए कहा इनके बहुत जन्मों के अंत में किनके? जगत पिता और जगदम्बा के बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ तुमको सुखधाम ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कह देते हैं। तो गाय का मुख कौन हुआ? जो यज्ञ के आदि में माता थी, यज्ञ माता जिसके लिए मुरली में बोला है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर बैठती थी। हम तो समझते थे ये बहुत अच्छा नंबर माला में आ रही है। फिर वो गुम हो गई। गुम किस लिए हो गई? जो आदि सो अंत का पार्ट बजाने के लिए।
ओम शांति। तेईस नंबर के रजिस्टर में 32 पेज पर 11/8/89 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जिनमें अज्ञान है अर्थात ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल, डल हो गई। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारसमणि। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती। नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीर कैसे कैसे काले होते हैं।
अफ्रीका की तरफ कितने काले हैं।
शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है,
आत्मा तो एक ही है।
अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे। ये सारा ज्ञान था, वो फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी में कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों मैं तुमको नाली फूल बनाता हूं, तुम सुजाग होते हो, घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, तो तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानी नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राह समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब जैसे मूर्मती हो गए। कौन कहते हैं? बाप। बच्ची तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना। मनुष्य तो बिल्कुल जानवर में सही, जो बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वो तो रस्म चलती रहती है। कहाँ की रस्म रिवाज कहाँ की चलती है, संगम युग की। संगम युग में मिट्टी का दीपक कौन सा हुआ? ये शरीर है मिट्टी से बना हुआ, तो ये मिट्टी का दीपक, इसमें ज्ञान की ज्योति तेल डाला जाता है। तो वहां उन्होंने स्थूल दीपक बना दिया। अब उन स्थूल दीपकों से कोई दीपावली नहीं होती है। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई, उन्हीं की ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक ही बाप पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। किनके पास? उनके पास। क्यों? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है, तो इनके पास कहना चाहिए या उनके पास? क्यों?
अरे
ब्रह्मा के तन में ही बोल रहा है, दूर तो नहीं है ना, दूर तो उनके उनके शब्द तो दूर के लिए कहा जाता है, उनके पास पढ़ना चाहिए ना, और कोई ये नॉलेज नहीं पढ़ा सकता सिवाय उनके। बाप अनायास ही आते हैं, ढिंडोरा थोड़ा ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूं। अनायास ही आकर के प्रवेश करते हैं, वो आवाज तो कर ही नहीं सकते। जब तक उनको आर्गंस न मिले, आत्मा भी आर्गंस बिगर आवाज नहीं कर सकती। जैसे आत्मा आर्गंस बिगर आवाज नहीं कर सकती, वैसे परमपिता भी आर्गंस के बगैर आवाज नहीं कर सकते। आत्मा भी शरीर में जब आती है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं ये नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। कौन समझते हैं? बच्चे। और कौन सी दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की ही संगमी की दुनिया की बात है, क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। उस ब्राह्मणों के छोटे से संसार में भी ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है, ये तो बाप ही आकर के कराते हैं। कौन चाहेगा कि विनाश हो जाए? स्वर्ग का साक्षात्कार सब कोई करना चाहेंगे। इस नंबर के रजिस्टर में 32 पेज पर 11-8-89 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्यांत बात चल रही थी। बाप अनायास ही आते हैं और बाप के सिवाय ये नाले भी कोई दे नहीं सकता, और बाप आकर के आवाज करती है आर्गन्स के द्वारा नाली देने के लिए। विनाश का साक्षात्कार बाप के सिवाय कोई नहीं करा सकता, और कोई करना भी नहीं चाहता। विनाश कराना या करना ये बाप का ही काम है, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो बाप आकर के कराते हैं। और धर्म पिताएं आकर के सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं करते, पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं करा सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए सामना करने की जबरदस्त शक्ति। वो सिवाय परम पिता परमात्मा की और ये शक्ति किसी में नहीं है। और धर्म वालों ने सिर्फ आकर के अपनी धारणा स्थापन की और पुराना पन जो का त्यों बना रहा। जैसे विष का भरा हुआ घड़ा हो या आधा घड़ा हो और उसमें कोई आधा घड़ा दूध भर दे तो क्या सारा दूध हो जाएगा? ये सारे में विष के ही गुण हो जाएंगे।
अंततः फिर भी विष हो जाएगा। तो ऐसे ही जब तक वो निर्विष न हो, जो सारी ही कमजोरी जब तक बाहर न निकले, तब तक नई दुनिया की स्थापना का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कहेंगे कि धर्म पिताओं ने आकर के सिर्फ मकान की टाइम टू टाइम मरम्मत की है, लेकिन नया मकान कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनमें विनाश कराने की ताकत ही नहीं है। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है ड्रामा अनुसार। जिनको बाप से नालिज लेनी है वो आती रहती है।
आएंगे कौन?
जिनको डायरेक्ट बाप से नालिज लेनी है, क्योंकि बाप पुरानी दुनिया सारी खत्म कराए देते हैं। और जिनको डायरेक्ट बाप से नालिज नहीं लेनी होगी, कोई दूसरे की मत पर भी कुछ न कुछ चलने के जिनके संस्कार होंगे, तो भन बाप से आकर नालिज लें भी, लेकिन फिर भी अंत में वो उसी तरफ चले जाएंगे। और बाप से पूरी नालिज न ले पाने के कारण उनका पुरानापन पूरा भस्म नहीं होगा, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए आदि में नहीं आ सकती। कितनों को बाप ने ज्ञान दिया होगा, अनगिनत। गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। परमात्मा से ज्ञान लेने के लिए गांव गांव से आते हैं ढेर, बड़े बड़े शहरों से नहीं आते हैं, शहरों से भी आते हैं। गांव और शहर का मतलब है बड़े बड़े सेंटर, वो ब्राह्मणों की दुनिया के हो गए शहर, और गांव का मतलब है गीता पाठशालाएं छोटी छोटी, जिनमें थोड़े से जिज्ञासु पहुंचते हैं। गांव गांव की सर्विस के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया, गांवों की सर्विस करो, वहां के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। तो गांव गांव से कितने ढेर आते हैं, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, जो एक ही बार होता है। जैसे एक मुरली में बोला है, बाप की प्रत्यक्षता होगी दिल्ली जैसे गांव से। अब दिल्ली तो इतना बड़ा शहर, गांव के क्यों बता दिया? निश्चित त्रिमूर्ति शिव जयंती बताई, 78 के लिए इशारा किया। त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी 78 में, तो चारों तरफ बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। सागर और नदी का मेला, सागर और नदियों का मेला दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में कहाँ होता है, कलकत्ते में तो होता है। सागर और नदी दिल्ली में भी मिलेंगे। इस तरह की बात जो वाणी में बोली हुई है वो बेहद के सागर और नदियों की मिलन की बात बताई है। दिल्ली में जब जावेंगे तो सागर और नदियों का मेला होगा। दिल्ली जैसे गांव में ही ऐसी प्रत्यक्षता हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बाबा कोई स्थूल शहरों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया के अंदर जो शहर हैं और गांव हैं, उनकी बात हो रही है। तो छोटी छोटी गीता पाठशालाओं से ढेर के ढेर आते हैं, बड़े शहरों में से भी आते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स में से भी आते हैं, लेकिन थोड़े। और वर्तमान में गार्डों की सर्विस पर स्कूल गवर्नमेंट भी ज्यादा ध्यान दे रही है और ईश्वरी गवर्नमेंट भी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत में 70% तो गांवड़े ही हैं और 30% जनसंख्या शहरों में रहती है। तो बाप ये मेला लगाने के लिए एक ही बार आते हैं और संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिनकी ज्योति जगाते हैं वो फिर जाकर के औरों की ज्योति जगाती है। क्या ये ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है, इसमें कोई विशेष भागा दौड़ी करने की बात नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने की बात नहीं है। ये सर्विस की मशीनरी ऑटोमेटिक है, जो बाप से अपनी ज्योति जगा लेते हैं वो स्वयं ही जाकर दूसरों की ज्योति जगाते रहते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है, भक्ति मार्ग में है तो अंधेरा होता है, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप चाहिए, वो आते ही हैं संगम युग पर, पुरानी दुनिया में मिल न सके। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा। बाद आएगा, बाबा का मतलब है कि बहुत लंबे समय के बाद, एक मिसाल दिया 40,000 वर्ष के बाद, मतलब उन्हें विनाश पर विश्वास विश्वास नहीं है। जिन्हें जो बड़े बड़े शास्त्रकार हैं, बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनको ये विश्वास नहीं रहा कि अब विनाश होना। ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है, वेद 76 में जब जैसा विनाश वो समझते थे वैसा नहीं हुआ तो विश्वास ही उखड़ गया। लेकिन वास्तव में विश्वास उखाड़ने की बात नहीं है, बाबा की जो भी महावाक्य हैं वो अपनी जगह पर अटल हैं, क्योंकि बाबा ने तो क्लियर कह दिया विनाश ज्वाला और ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकलेगी तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों से शुरुआत होगी विनाश ज्वाला की, या बाहर की दुनिया वालों से होगी? बाहर की दुनिया के विनाश की तो पहले बात ही नहीं हो सकती, घर के अंदर से कचरे की सफाई होती है तब बाहर सफाई की जाती है। तो जिनको विश्वास उखड़ गया उन्होंने समझा विनाश होना नहीं है, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाते चले जाओ, जो पैसा जहां से खींचे वो खींच लो और अपने अंदर में कर लो। जबकि बाबा ने डायरेक्शन दिए थे बच्चे अब विनाश होना है, अब प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। हाँ माउंट आबू के लिए सिर्फ छूट दी थी कि माउंट आबू में जो बाबा मकान बनाए रहे हैं वो तो बच्चों के विनाश के टाइम पर काम आवे, और शास्त्रों में भी ऐसा जिक्र है कि सारी दुनिया का विनाश होता है लेकिन वैताग्य पर्वत का विनाश कयामत के समय में नहीं होगा। तो वहां तपस्या के प्रभाव की बात है, आदि की तपस्या और अंत की तपस्या। जब बच्चे संपन्न स्टेज में होते हैं तो अंत की संपन्न स्टेज की यादगार माउंट आबू में भीलवाड़ा मंदिर अभी तक भी बनी हुई है। तो उस तपस्या के बल से सारी दुनिया में प्रकृति प्रकोप मचाएगी लेकिन उसका असर माउंट आबू में नहीं होगा, क्योंकि वहीं से नई दुनिया की स्थापना का फाउंडेशन पड़ता है। तो वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, इसलिए इस दुनिया के सुख भोग लो, इतना जरूर समझते हैं कि जरूर आकर ज्ञान देकर सदगति करेंगे, तो जरूर उनमें अज्ञान है। मुख से नहीं कहते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद आएगा, लेकिन उनके कर्म उनकी एक्टिविटी ये साबित कर देती है कि
खेल को विनाश के ऊपर निश्चय नहीं है, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। तो इन अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। दूसरा प्रश्न, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है, भक्ति माना अंधश्रद्धा। आत्मा में ज्ञान नहीं है, परंतु जल बुद्धि होने के कारण समझते हैं कि भक्ति ही ज्ञान है। भक्ति होती है किसकी? देहधारियों की। और याद किसकी होती है? आत्मा की। आत्मा की याद और देहधारियों की भक्ति होती है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूरी के आने से सुधरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते ही हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? जो प्रगटा है, क्या सिर्फ बिंदु के लिए? बिंदु कैसे प्रगटेगा, कैसे प्रत्यक्ष होगा? कोई शरीर के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होगा। जिसके प्रत्यक्ष होने से अज्ञान रूपी अंधकार खलास हो जाए, आत्मा को पता चल जाए, हूँ मैं, आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ सत्य रूपी रंगमंच पर, कौन से विशेष देवता का मैंने पार्ट बजाया है संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, क्योंकि यही युग सबसे ऊंचे ऊंचे, तो ऊंचे ऊंचे पार्टधारी भी यहाँ डिक्लेयर होने चाहिए। तो ऐसा ज्ञान सूर्य जो आत्माओं में उत्तम से उत्तम आत्माओं के पार्ट को संगम युग पर डिक्लेयर करता है, कराता है, वो कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होंगे तो कहेंगे जब कलयुग पूरा होगा तब सोच रहा होगा। अब ये सब बातें बाप आकर समझाते कि कलयुग कब पूरा होता है और सतयुग कब शुरू होता है, कब शुरू होता है, समझाते हैं तो कुछ समझाया होगा कि नहीं, कि आया ही नहीं। कब शुरू होता है, कब है संगम पूरा हो जाएगा? संगम माना ही दो युगों का मेल, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, तो उसमें तो दोनों युग आ जाते हैं, कलयुग भी आ गया और सतयुग भी आ गया। तो सतयुग के आदि कब हुआ, कब कहें? बाप ही बतलाते हैं और कोई एक्यूरेट बतला ही नहीं सकता। तो कब बताया? ब्रह्मा के मुख से भी बताया, लेकिन एक होता है सुनना सुनाना और दूसरा होता है समझना और समझाना। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सुनना और सुनाना, ये चलता है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में होता है समझना और दूसरों को भी समझाना। तो ब्रह्मा द्वारा सिर्फ क्या हुआ? सुनना और सुनाना। ये फाउंडेशन यज्ञ के आदि में भी पड़ा था, आदि ब्रह्मा, क्योंकि दादा लेखराज ये तो टाइटलधारी ब्रह्मा हुए बाद में, इनको भी पढ़ाने वाली कोई यज्ञ माता थी, इनसे भी जास्ती पावरफुल, जिसके द्वारा ब्रह्मा को भी साक्षात्कारों का रहस्य का पता चला। नहीं तो इनको अपने साक्षात्कारों का भी कुछ पता नहीं चला, साक्षात्कार हुए लेकिन समझ कुछ भी नहीं सके। तो जो आदि ब्रह्मा है जिसे जगदम्बा कहा जाता है, उस जगदम्बा के द्वारा सुनने, साक्षात्कारों को सुनने और साक्षात्कारों को सुनाने का कार्य हुआ, लेकिन समझने समझाने का कार्य उसके थ्रू नहीं शुरू हुआ। किसके थ्रू शुरू हुआ? ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो ब्राह्मण तो तब बने जब ब्रह्मा के मुख से सुने, मुखवंशावली बने। तो ये जगत पिता और जगदम्बा ये रुद्रमाला के दो मणके हैं, परमात्मा बाप जिन बच्चों से बात करते हैं मुरली, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, मुरली में बोला। ये ब्रह्मा तो बीच में समझ सुन लेता है, कौन ब्रह्मा? दादा लेखराज, क्योंकि इनके द्वारा इन बातों को समझने समझाने का कार्य नहीं होना था, समझने समझाने का कार्य होगा तुम बच्चों के द्वारा। तो ये कि आदमी में जो बच्चे थे वो ही रुद्रमाला के फर्स्ट मण के हैं, और सतयुग में जैसी परंपरा चलेगी, कौन सी परंपरा? एक परिवार में एक बच्चा और एक बच्ची होगी, तो इसका फाउंडेशन यहाँ परमात्मा स्वयं ही आकर के डालते हैं। परमात्मा बाप के फर्स्ट एक बच्चा और एक बच्ची, जगत पिता और जगदम्बा। तो इन दो बच्चों के द्वारा परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है, एक के द्वारा सिर्फ साक्षात्कार सुनने सुनाने का पार्ट, और दूसरे के द्वारा समझने और समझाने का पार्ट। तो समझना और समझाना इसी को ज्ञान कहा जाता है। भक्ति किसको कहा जाता है? सुनना और सुनाना में भक्ति, भक्ति में सिर्फ सुनना सुनाना होता है। तो कलयुग कब पूरा होगा और सतयुग कब शुरू होगा? मुरलियों में पहले ही बोल दिया गया कि 60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में, 50 वर्ष लगते हैं पढ़ाई में। तो पढ़ाई का कार्य चलता है 50 वर्ष, सब आत्माओं के लिए नहीं, किन के लिए? राम और कृष्ण, बाप और बच्चा, इनमें 50 वर्ष के बाद पढ़ाई किसकी पूरी होती है? क्योंकि 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तो 88-89 में वो कृष्ण वाली आत्मा भागवत के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। भागवत के बगैर कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष नहीं होता है। गीता ज्ञान सुनाएंगे तो लोग उतने इकट्ठे होकर के ध्यान से नहीं सुनेंगे, और जहां भागवत होगी तो ढेर के ढेर लोग इकट्ठे होकर के बड़े चाव से भागवत का कथा सुनते हैं। ये यादगार कहाँ की है? ये इसी समय की यादगार है कि वास्तव में उस ज्ञान की तरफ, गीता ज्ञान जो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से सुनाया, उन बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल भागवत शुरू होती है तो सबका ध्यान न चाहते हुए भी खींच जाता है। इसलिए बोला कि ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है तो अज्ञान अंधेरा नष्ट हो जाता है। बच्चे नंबरवार इन बातों को समझते हैं कि कलयुग कब पूरा होता है, किन के लिए कब पूरा होता है, और सतयुग कब शुरू होता है। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं है। नंबरवार मार्क्स मिलते हैं, तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, जबकि बाप आया हुआ है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं संगम पर ही आकर के इस शरीर का लोन लेता हूं, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूं। लोन लेना माने लोन लिया जाता है ना, तो जैसे दुनिया में लोन लेते हैं, लोन लेने वाला एक और लोन देने वाला दूसरा, तो बाप भी आकर के लोन लेते हैं। किसे लोन लेते हैं? है? बाप आकर इस शरीर का लोन लेते हैं, अर्थात प्रकृति का आधार लेते हैं। प्रकृति माने 5 तत्वों के बने पुतले का आधार लेते हैं। गीता में भी ये अक्षर है, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है, ये है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच। एक गीता ही ग्रंथ है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है, और कोई ग्रंथ में नहीं। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, फिर वो वाच कैसे? उवाच माना बोलना, तो निराकार भगवान उवाच कैसे करेगा, बोलेगा कैसे? ऐसे तो और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जैसे अल्लाह मियां ने फरमाया, फरमाया कहो उवाच कहो, बात तो एक ही है। तो कैसे फरमाया? क्या ऊपर से आवाज आई? अभी तो बोला कि आर्गन्स के बगैर ना आत्मा कोई कार्य कर सकती और ना परमात्मा बाप कोई कार्य कर सकते। आवाज कैसे करेंगे जब तक मुख का आधार न ले? तो बताया कि उनको अपना शरीर नहीं है। भले वो निराकार कहा जाता है लेकिन उसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। निराकार माना सिर्फ बिंदु नहीं, निराकार भगवान उवाच नहीं कर सकता। बिंदु अगर समझा जाए तो वास्तव में वो जिस शरीर के द्वारा आकर के उवाच करता है वो निराकारी स्टेज में होता है। जैसे जो भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए हैं वो भी निराकारी स्टेज में देखे जाते हैं। क्राइस्ट का चेहरा, बुद्ध का चेहरा, गुरु नानक का चेहरा ध्यान से देखा जाए, देखने मात्र से ही लगता है कि इनकी निराकारी स्टेज है, जैसे आत्मा परमधाम में बैठी हुई। तो उस निराकार को कहा जाता है भगवान और वो वाच करता है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ये अंतर है उन धर्म पिताओं में। उनको अपना बाद में शरीर भी मिलता है, वो भी जब पहले पहले आते हैं तो उनको अपना शरीर नहीं होता। किनको? धर्म पिताओं को भी अपना शरीर नहीं होता और परमात्मा को भी अपना शरीर नहीं होता। तो दोनों ही निराकारी स्टेज में होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता और उन धर्म पिताओं को जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस शरीर का लोन लेते हैं, उसके संग का रंग भी लग जाता है। तो उनको लेपछेप लगता है और परमात्मा बाप को लेपछेप नहीं लगता है, जो गर्भ से शरीर धारण करना पड़े। इसलिए उसको कहा जाता है अजन्म। वो है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता है, यह है स्थूल साकार दुनिया और वो है आत्माओं की दुनिया। लेकिन खेल सारा यहां चलता है, निराकारी दुनिया में कोई खेल नहीं चलता, क्योंकि वहां आर्गन ही नहीं होते, पांच तत्वों का बना पुतला ही नहीं होता। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पार्ट बजाने आती हैं। तो ये ख्याल तो तुम बच्चों को ही बुद्धि में बिठाया जाता है। इसको ज्ञान कहा जाता है, वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से ही आता है, और भक्ति, भक्ति के जो वेद शास्त्र है जिनसे ज्ञान समझा जाता है, वो अनेक मनुष्यों की अनेक प्रकार की बुद्धि से आता है। तुम्हारा साधु संन्यासियों से इतना भेंटा नहीं हुआ है, बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा जाता है। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ आती है, बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी। फिर वापस घर भी गया, ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थावस्था तक जाते हैं, जब आयु बड़ी हो जाती है छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले नहीं सकते। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, यादगार कहाँ के? कुंभ का मेला भी तो वास्तव में यहाँ की यादगार है ना। जब तीन नदियों का मेल होता है, छोटे छोटे नागे माना आत्मिक स्थिति में रहने वाली बीज रूप आत्मा जो यज्ञ की आदि में भी थी और अंत में भी आती है दूसरा जन्म लेकर, तो छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, उनको तो दवाइयां खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। वो है स्थूल दवाइयां, और यहां ज्ञान की दवाइयां हैं, युक्तियां हैं जिनसे कर्मेंद्रियां शीतल होती है। सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? मन मना भव। तुम्हारा तो है योग बल, योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना होता है। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो जाती है। बीच में नहीं, आखिरीन क्यों? क्योंकि कर्म इंद्रियों से जितना जितना हिसाब किताब किया है 63 जन्मों में, वो हिसाब किताब की आवृत्ति संगम युग में होती जरूर है, चाहे संकल्पों के द्वारा हो, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे कर्मणा। कई कहते हैं बाबा आया है, तो माया बहुत तंग करती है। वहां भक्ति मार्ग में ऐसी बात नहीं होती है। मतलब सारा दोष किसके ऊपर आ गया? बाबा के ऊपर। जब से एडवांस नॉलेज में आए हैं तब से माया बहुत तंग कर रही है, पहले इतना तंग नहीं करती थी। ये क्या बात हुई है? कोई अच्छा वैद्य होता है तो ऐसी दवाई देता है जो सारे शरीर की दबी पड़ी बीमारी विजातीय द्रव्य सब बाहर निकल पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैद्य खराब है। जैसे आजकल के डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं तो जो मर्ज बीमारी अंदर ही मर्ज हो जाती है, वो पूरी बाहर नहीं निकलती, तो वो है विदेशी दवाइयां। विदेशी दवाइयां मर्ज को पूरा बाहर नहीं निकालती। तो ऐसे ही जो विदेशी धर्म पिताए हैं, दूसरे दूसरे धर्म की स्थापना करने वाले, वो कमजोरी को पूरा बाहर नहीं निकालते हैं, माने कमजोरी का विनाश नहीं कर पाते पूरा, वो सिर्फ दवाई देते हैं जिससे बीमारी थोड़े समय के लिए दब जाती। ऐसे लगता है जैसे मकान नया हो गया लेकिन थोड़े समय के बाद फिर पुराना पड़ गया। तो बाप आकर के अविनाशी दवाई देते। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। अभी क्यों नहीं वश हो रही है? क्योंकि बुद्धि का योग, थोड़ी सी माया आई और बुद्धि का योग हिल जाता है, वो नहीं होना।